जय माँ। आज हम लोग योग समन्वय में योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज यानी समग्र ज्ञान, कुछ लोग कहेंगे पूर्ण ज्ञान, ये भी हम कह सकते हैं पूर्णता इंटीग्रल शब्द से, समग्र ज्ञान। ये 23वां चैप्टर है और उसका नाम है द कंडीशंस ऑफ अटेनमेंट टू द नोसिस। अब पहले वाले चैप्टर में हम लोग विज्ञान या नोसिस, ये दो शब्द से परिचित हो चुके हैं। तो विज्ञान क्या है? वो नहीं जो हम लोग जैसे समझते हैं, आध्यात्मिक भाषा में विज्ञान में कोश। तो विज्ञान अगर हम नॉर्मल उसमें भी देखें तो एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। तो ज्ञान हमेशा एसेंशियल नॉलेज, जैसे आप बताइए कि अब ये सारा जड़ पदार्थ किस चीज़ से बना है, तो आप कहेंगे अणुओं से बना है, ये ज्ञान है। पर विज्ञान क्या है कि अणुओं से कैसे बना है और उससे और क्या क्या बना है। अणुओं से केवल ये पदार्थ नहीं बने, ये मटेरियल सब्सटेंस ही नहीं बना, हर चीज़ अणुओं से बनी है। तो वो जो उसका विस्तृत वर्णन है, इसलिए गीता कहती है समग्र ज्ञान, वो सुप्रामेंटल नॉलेज है, वो विज्ञान है। तो अब जैसे ही जब हम लोग एसेंशियल ज्ञान की बात करते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान को जान सकते हैं अपने अंदर, विश्व के अंदर, तो हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन विज्ञान की जब बात होती है तो भगवान कैसे इस सृष्टि की रचना करते हैं, तो विज्ञान में कोश यानी विज्ञान यानी सुपर माइंड के सेंस में है। इसको हमको ये ना शब्दों की यही समस्या है कि अब हम विज्ञान से साइंस समझते हैं। अगर हम इसको विज्ञान साइंस कहना है तो द साइंस दैट द डिवाइन यूजेस, कि भगवान का जो ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस है, उनकी जो सर्वज्ञता और सर्व सक्षमता है, वो कैसे इस सृष्टि में नाना प्रकार के नाम रूप जीवों का कैसे वो उनसे प्रकट होती हैं, कैसे सस्टेन होती हैं, विलय होती हैं, सब कुछ जो है वो सुपर माइंड के अंदर है। अब हम देखते हैं कि भगवान एक ही वही है और दूसरा कोई नहीं है, तो उनकी एक अवस्था है सच्चिदानंद, जिसमें वो स्वयं को जानते हैं। दूसरी अवस्था है ये संसार, जिसमें वो स्वयं को ही विस्मृत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, अज्ञान क्या है, उन्होंने स्वयं को विस्मृत कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में चला गया, उससे आप उठा के बोलेंगे भाई तुम कौन हो, तो लड़खड़ाएगा कि मैं कौन हूं, धीरे 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 जागेगा। सुपर माइंड क्या है, जहां भगवान स्वयं को भी जानते हैं और संसार को भी जानते हैं। इसलिए सुपर माइंड की बहुत अधिक जो रोल है, महत्व है। कम से कम इस संसार में अगर आपको कोई भी परिवर्तन लाना है तो एकमात्र सच्चिदानंद को जान लेना काफी नहीं है। सच्चिदानंद को जान के या उनसे एक हो के आप इस संसार से अलग हो सकते हैं, उसमें भगवान स्वयं को जानते हैं और उस अवस्था में रहते हैं। लेकिन अगर वही भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सृष्टि की शक्ति कैसे आती है, नाना प्रकार के जीव रूपों में कैसे वो व्याप्त हैं, सच में एक मैजिक है। अगर कोई सोचे कि एक साथ भगवान सारी सृष्टि में कण कण में व्याप्त हैं, जानते हैं, हर चीज को आगे ले जा रहे हैं, हर चीज में उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, एक उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, रिलीजन नहीं है उनका कि हर किसी को उन्होंने बता दिया तुमको ये करना है। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे उठ रहा है, एक 9 बजे उठ रहा है, एक सो रहा है, एक दारू के नशे में पड़ा हुआ है, एक बिल्कुल जागृत है। सबके अंदर भगवान अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, और केवल मनुष्यों की बात नहीं है, पशुओं के अंदर, जीवों के अंदर, एक एक कण कण में। तो कैसे करते हैं, इसका रहस्य सुपर माइंड के पास है। अब आप सोच ली कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो यदि मनुष्य को इस सृष्टि में भगवान का काम रियली करना है, रियल सेंस में, तो आपको विज्ञान में कोश के बिना, विज्ञान में चेतना में जागृत हुए बिना, यानी अब साधारण शब्दों में सुप्रामेंटल, हम नहीं कर सकते हैं। तो बाकी हम क्या कर रहे हैं कर्म, कि हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं, ये ठीक है, ये हमारी एक एसेंशियल कर्म योग है कि हम अपने लिए नहीं, अहंकार से मुक्त होने के लिए ये आवश्यक है। लेकिन एक्चुअली, और ये दिखने में आता है जब माताजी श्री अरविंद के जीवन में, एक घटना बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दोनों व्यक्ति को सब लोग जानते हैं प्रायः। तो एक दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, बहुत दोनों ही बहुत ही नामी गिरामी आश्रम के लोग, और अगर आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि गलती उस आदमी की थी, बाहर से देखेंगे तो। फिर माँ ने क्या पर, जब माँ के पास ये बात गई तो माँ ने उस लड़की को बोला तुम यहां से चली जाओ। अब देखिए इसको आप कैसे समझेंगे कि भाई क्या कह रही माँ। वो चली गई। अब संसार में उसने इतना काम किया और कर रही है, मतलब ये भी एक भगवान की लीला है कि वो आप बाहर से देख के, एक ह्यूमन जस्टिस नहीं है। इसीलिए भगवान कैसे किसी के अंदर क्या करते हैं हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग की मानवीय दृष्टि है। तो अगर भगवान का खेल समझना है कि वो कैसे कण कण में ना केवल व्याप्त हैं, कार्यरत हैं। व्याप्त वाला पार्ट आप सच्चिदानंद ब्रह्म से जान जाएं, क्योंकि कण कण में सच्चिदानंद ब्रह्म है। लेकिन कैसे सच्चिदानंद ब्रह्म जीवाणु बनता है, कोषाणु बनता है, अणु बनता है, कैसे वो भगवान देवों के अंदर व्याप्त है, असुरों के अंदर व्याप्त है, इसके लिए सुपरमाइंड आवश्यक है। तो यदि संसार में दिव्य जीवन की अगर हम कल्पना भी करें तो बिना सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन के ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर इसकी बात है। वो अलग बात है कि हर व्यक्ति कहता है हम भगवान का काम कर रहे हैं, बात इसकी नहीं हो रही है। हर साधु संत महात्मा बैठा हुआ है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए हर किसी को अपने अपने ढंग से। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं और कैसे कार्य करते हैं, ये सुपर माइंड है। तो अब चूंकि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और पूरा शेयरविंद का योग ही सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन की बात है, तो अब ये आती है कि द कंडीशंस ऑफ अटेनमेंट टू द नोसिस, कैसे ये हम इसको प्राप्त करें। फिर से एक बार एक बात स्मरण करानी है कि ये सारे जो उन्होंने लिखे हैं शेयरविंद ने, मुख्यतः 1920 के पहले लिखे हैं। यही चीज को जब शेयरविंद बाद में कहते हैं तो कहते हैं ओपन टू द मदर। इसी चीज को जब बाद में इसका विस्तृत वर्णन होता है, शेयरविंद का एक पूरी लेखनी है उनकी, सीरीज ऑफ राइटिंग्स है 1949 की, जिसका नाम है सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन। वहां वो विस्तार से कि दिव्य देह कैसे बनेगी, जो दो मुख्य कठिनाइयां हैं सेक्सुअल डिफिकल्टी और भोजन की डिफिकल्टी, कैसे डील होंगी, कैसे टैकिल होंगी, उसकी क्या समस्या है, कितनी रखी जाएंगी, कितनी छोड़ी जाएंगी, कैसे मनुष्य का मन माइंड ऑफ लाइट में कन्वर्ट होगा, तो वो सब बाद में है। यहां केवल श्री अरविंद एक परिचय दे रहे हैं, दैट्स ऑल, ताकि हम लोगों को मूल मूल रूप से पता चल सके। नॉलेज इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द विज्ञान, बट नॉलेज इज नॉट इट्स ओनली पावर। तो पहले ये धारणा की सुपरामेंटल तो माइंड का ज्ञान से संबंध है, तो सुपरामेंटल ज्ञान का ही एक हायर फॉर्म है। सुपरामेंटल में सब कुछ है, वो भगवान का परम ऐश्वर्य। एक्चुअली गीता में एक शब्द आता है, वो श्री कृष्ण बात बात में कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुमको अपना वो ऐश्वर्य प्रकट करता हूँ। अब ऐश्वर्य क्या है, उसमें सब कुछ है, प्रकाश है, शक्ति है, उसमें अर्जुन देखते हैं अनेक अद्भुत दर्शन। तो वो कैसे, अब वहां पर वो नहीं बताते हैं कि कैसे मैं प्रकट कर रहा हूं, ये सब चीजें मैं कैसे बनाऊं, वो सुपर माइंड में उसका ज्ञान है। लेकिन भगवान का जो परम ऐश्वर्य है वो सुपर माइंड में है। तो परम ऐश्वर्य में सब कुछ है, केवल ज्ञान नहीं है, प्रेम है, आनंद है, सुपरामेंटल लव है, सुपरामेंटल आनंद है, सुपरामेंटल पीस है, सारी की सारी चीजें हैं। तो वहां पर वो बता रहे हैं, द ट्रूथ कॉन्शियसनेस लाइक एवरी अदर प्लेन फाउंड्स इटसेल्फ। अब यहां सुपर माइंड को शेरविंद एक शब्द यूज करें, ट्रूथ कॉन्शियसनेस, जगह जगह क्या है, वो चेतना जो सत्य से ही ऑपरेट करती है, उसको उसमें कोई एरर की संभावना नहीं है। क्यों श्री अरविंद सुपर माइंड की इतनी चेष्टा कर रहे थे, अगर आप देखें इवन सिद्धियां, कुछ लोग कहेंगे ये सिद्धियां तो मिलती हैं, पहले भी मिलती हैं, हाँ मिलती हैं, और ऐसे योगी हैं जो इंट्यूशन द्वारा जान जाते हैं, तो फिर सुपर माइंड में क्या है। सुपर माइंड में त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। इंट्यूशन इवन जो योगियों के अंदर ऑपरेटिव है, उसमें आप एक बहुत पार्शियल विजन है, उसमें कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। सुपर माइंड के अंदर कंप्लीट ट्रूथ है। तो शेरविन चाहते थे कि अब जो आने वाली सभ्यता हो या मनुष्य से ऊपर जो भी आने वाला है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि की संभावना ना हो, क्योंकि तभी वो स्थिर रहेगी। नहीं तो आप इंट्यूटिव समाज बनेगा लेकिन गिरेगा, क्योंकि उसमें त्रुटि की संभावना है। द ट्रूथ कॉन्शियसनेस, इसीलिए उन्होंने सत्य चेतना कहा है। लाइक एवरी अदर प्लेन फाउंड्स इटसेल्फ अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल विच इज naturally the key of all its motions, but it is not limited by it. It contains all the other powers of existence. Only the character and working of these other powers is modified. अब जैसे आनंद में जगत में आनंद मुख्य रहेगा, यानी कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, विज्ञान है, प्रेम है, सब है, पर मुख्यता आनंद रहेगा। चित लोक में क्या होगा? चेतना, सब कुछ चेतना का पूरा प्रकटन होगा, आनंद थोड़ा पीछे रहेगा, सब है। सतलोक में प्योर एग्जिस्टेंस, सारा मॉडल तो सच्चिदानंद का ही है। अब इवन हमारे अज्ञान में जीवन शक्ति क्या है? जीवन है चित्त तपस का एक अज्ञान में जो रूप है। मॉडल सब जगह सच्चिदानंद ही है। तो विज्ञान में लोक में यानी सुप्रामेंटल वर्ल्ड में ये ज्ञान या विज्ञान प्रधान है, वो जगत सब है, लेकिन आनंद है, प्रेम है, सब कुछ है। और शेरविंद कहते हैं क्यों आवश्यक है? कहते हैं इसके बिना अगर तुम आनंद को, प्रेम को कुछ भी एस्टैब्लिश करोगे तो बुरी तरह गिरेगा। वो कहते हैं कि हम लोग श्री कृष्ण के ही कार्य को पूरा करने आए हैं, टू मैनिफेस्ट दी डिवाइन लव एंड आनंदा इज अवर पर्पस, विच इज जो श्री कृष्ण का कार्य है। दिलीप कुमार रॉय को बड़ी इससे प्रॉब्लम होती थी, क्या बहुत कठोर तपस्या बता रहे हैं हम लोग, वैष्णव में तो बस भजन गा के भक्ति करके। तो कहते हैं हाँ, लेकिन हमने अपने अनुभव से पाया है कि बिना सत्य चेतना के आधार के वो बुरी तरह विकृत होके गिर सकता है, और यही हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यही हुआ है। तो पहले बेस करेक्ट हो, उसके बाद बाकी सब चीजें आएंगी। अब फिर वो माइंड की बताते हैं कि इन द मेंटल बीइंग माइंड सेंस और इंटेलिजेंस इज द ओरिजिनल एंड डोमिनेंट प्रिंसिपल। तो यहाँ इंटेलिजेंस क्या हुआ? इंटेलिजेंस वो शक्ति है जिसके द्वारा हम चीजों को जानते हैं, बोधि या बुद्धि कोई कहना चाहे, तो ये वो शक्ति है जिसके द्वारा। अब माइंड के साथ इंटेलिजेंस का विकास शुरू होता है। पशुओं में इंटेलिजेंस कैसे ऑपरेट करती है? कॉन्शियस इंटेलिजेंस नहीं है। आप देखिए, उनको ठीक पता होता है कि आपके घर में चूहे को भी पता है कैसे जाना है, कहां पर क्या है, सब पता है। चींटियों को तो कैसे पता होता है? आश्चर्य होता है। मतलब एक कुछ दाने होंगे चीनी के, चींटी पहुंच जाएगी। पर अगर आप चींटी से पूछोगे भैया ये विज्ञान क्या, वो कहेगी नहीं पता। वो तो ये भी नहीं बोलेगी कि क्या पता। तो इंटेलिजेंस तो सारी सृष्टि में है। एटम को कैसे पता है कि बाहरी जो वो है चक्र उसका, उसमें 2 या 8 होने चाहिए स्टेबिलिटी? एटम को किसने बताया? हाँ मौलिक, वो हाँ। और वो कहानी भी है ना, बड़ी फेमस, गाना भी है, अंडा क्या जाने कि उसका क्या होगा। अब ये लेकिन ज्ञान ऑपरेट कर रहा है। देखिए इसी कारण चीजें चल रही हैं। अगर वो ज्ञान नहीं होता तो कितनी बड़ी समस्या होती। कोई चीज है रितचित कहा गया, जो चीजों को सही अरेंजमेंट कर रही है, उसको नहीं पता है कि ये कैसे कर रहा हूं मैं। चींटी किताब नहीं लिख सकती है कि मैं कैसे जानती हूं कि चीनी कहाँ है, लेकिन प्रोफेसर उस किताब को लिख करके खूब पैसे कमा सकता है, क्योंकि प्रोफेसर के अंदर इंटेलिजेंस जागृत होनी शुरू हो गई। तो माइंड के साथ आती है इंटेलिजेंस, वो शक्ति जिससे हम जान सकते हैं। लेकिन माइंड में जो ये इंटेलिजेंस है वो सेंस के आधार पर काम करती है, उसका और कोई तरीका नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि जो देखा वही सच होता है। सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण अगर कोई अज्ञानपूर्ण कोई चीज संसार में प्रचलित है कि जो देखा वही सच है। उसका एक और वर्जन आता है, हमारे आश्रम में भी चलता है, जो सुना वो सच है। और भयंकर। आपने क्या सुना, किससे सुना? तो कहते भी है सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना, आंखों देखी, आंखें क्या देखती हैं। तो इसलिए मनुष्यों में जो इंटेलिजेंस है उसको सेंस इंटेलिजेंस कहा गया। यहां इसी की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। ही यानी मनुष्य हैज द इंटेलिजेंट सेंस ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस। कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह भाव है कि मैं हूं, वो चींटी के अंदर नहीं है, खरगोश के अंदर नहीं है, रैट के अंदर नहीं है, मैं हूं, ये भाव इंटेलिजेंट सेंस। द इंटेलिजेंस सेंस ऑफ अदर एग्जिस्टेंस देन इज ओन। चींटी जब तक टकराएगी नहीं तब तक उसको नहीं है। आपने देखा होगा ना कीड़े ऐसे, पशु भी ऐसे करते हैं, जाएंगे उनको अचानक ये सेंस होगी कार आ रही है तो भाग जाएंगे। पर मनुष्य के अंदर बाकी जीवों का भी एक इंटेलिजेंट सेंस है, इसीलिए मन को कहा गया सिक्स्थ सेंस। माइंड की जो इंटेलिजेंस है वो सिक्स्थ सेंस है, द इंटेलिजेंस सेंस ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स। ये गर्म है, ये ठंडा है, पशु जानते हैं लेकिन इंटेलिजेंट सेंस से नहीं जानते हैं। वो रिएक्ट करते हैं अपने आप कि भाई यहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मनुष्य जो है उसको इंटेलिजेंट सेंस से, वो उसको शब्द दे देगा, जान जाएगा। एंड persons एंड their relations विद हिमसेल्फ एंड ईच अदर। तो ये क्योंकि मैन इज इन प्रिंसिपल ए मेंटल बीइंग, और वहीं से उसका जो सुख दुख है वहीं से जन्म लेता है। अब पेज 489 पर, ऑल चेंजेस व्हेन वी पास फ्रॉम माइंड टू नोसिस। अब नोसिस के अंदर क्या है? वो तो ज्ञान है, नोसिस शब्द है, लैटिन वर्ड है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यूज किया गया है, तो सुपर माइंड की बात वहां पर नहीं है। लेकिन शेयरविंद इसको उपयोग में लाते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना ग्रीक वर्ड है। वन कैन सी कि शेयरविंद का ग्रीक सभ्यता से एक बहुत अच्छा लगाव है, जगह जगह पर है। तो नोसिस जो है ये शब्द है जो ओरिजिनल इसका लैटिन है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को या स्पिरिचुअल नॉलेज को नोसिस कहा गया है। तो यहां पर कह रहे हैं व्हेन वी पास फ्रॉम माइंड टू नोसिस, और ऐसे नहीं कि शेरविन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुपर माइंड की फुलनेस की बात बाद में आती है। ये इसीलिए उन्होंने जब सिंथेसिस में नोसिस वर्ड आएगा, बाद में लाइव डिवाइन में भी आएगा जो उसकी पूरी, पर जब वो बात की उनकी राइटिंग से तो सुपरमेंटल बीइंग की बात करते हैं। वो नोसिस का जो पहला कॉन्टैक्ट है सुपर माइंड के साथ वो नॉस्टिक बीइंग यानी ट्रू नॉलेज के साथ। फॉर देयर अ डिरेक्ट इनहेरेंट नॉलेज इज द सेंट्रल प्रिंसिपल। अब पहली चीज उन्होंने बता दी, यहां पर इंद्रियों के आधार पर हम जानते हैं, और नोसिस कैसे जानती है? बिना इंद्रियों के आधार के। वो इंद्रियों का डेटा ले सकती है लेकिन उसका जो तरीका है वो एनालिसिस नहीं है। जैसे कई बार लोग माँ को चित्र भेजते थे या किसी ने कुछ लिखा, माँ उसी से वो नॉस्टिक बीइंग जान सकता है, लेकिन इंद्रिय उसका आधार नहीं है। जैसे कोई मनुष्य जानने की चेष्टा करेगा तो फोटो देख के वो समझने की चेष्टा करेगा, लेकिन नोसिस के अंदर एक डायरेक्ट नॉलेज है, परसेप्शन डायरेक्ट है, इंट्यूशन से भी आगे। इंट्यूशन में एक लिमिटेड नॉलेज है। इंट्यूशन का ऐसे है कि मान लीजिए कोई चोर आया, इंट्यूशन की आप वो आया बड़े अच्छे से पोशाक उशाक धर के कि वो जैसे कोई राजा है या अच्छा आदमी है, इंट्यूशन जान जाएगी कि ये चोर है, लेकिन वो इतना ही जान रही है कि चोर है। आगे हम लोग देखेंगे, सुपरामेंटल बीइंग जानेगा चोर है लेकिन इस चोर वृत्ति के पीछे क्या है, उसका पूर्व क्या है, उसका भविष्य क्या है, कि अंदर में भगवान बैठे हुए हैं। अब ये ऐसा नहीं कि हर चोर के लिए वो ऐसे करेगा, वो जानता है ये डिफरेंस। इसीलिए भगवान को समझना बड़ा मुश्किल होता है। यही तो भगवान के कृतिकों की, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने ऐसे क्यों किया। श्री कृष्ण की ये जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो ऐसे काम नहीं करती है। एक चोर के अंदर अब वो समय आ गया है जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। एक चोर अभी अपने चोरी का करियर शुरू कर रहा है, उसको जाना है, ये सब सुपर माइंड में। इंट्यूशन बता देगी कि दृश्य के पीछे क्या है, घटनाक्रम में अभी क्या घटने वाला है, ये इंट्यूशन बताएगी। तो यहां पर कुछ लोग मां को बताते थे, जैसे यहां पे अंडे मिलते थे तो अंडों पे स्टैंप होता था आश्रम का, तो कुछ लोग थे महानुभाव जो चोरी कर, जो उसको अंडा मिलता था आश्रम से उसको बेच देते थे, चोरी नहीं करते, बेच देते थे। तो ये बात किसी ने मां को बताई, उनको लगा मां को नहीं पता होगा। माँ कहती हैं, आई नो इट, कीप क्वाइट। उनको सब पता है लेकिन वो किस दृष्टि से देख रही हैं। एक बार किसी ने जाते, अब देखिए बाहर के रूल आप देखेंगे तो अलग होगा, एक बार किसी ने जाते जाते, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनका किसी स्त्री के साथ संबंध, और वो डोर खुला रह गया होगा तो किसी ने देख लिया जो कुछ भी देखना था। तो उसने जाके माँ को बोला, माँ कहती है, यू नो इट, आई नो इट, दैट्स द एंड ऑफ इट, यू डोंट लुक इन दैट डायरेक्शन, यू डोंट सी। अब वो किस आधार पे कहती थी? इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को वो किसी भी तरह से ले लेंगी। तो ये एक टोटल विजन है। वो टोटल विजन इंट्यूशन तो केवल इतना बताएगी, ये आदमी देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन इसके अंदर ये सत्य है, ये बाहर से चोर है लेकिन इसके अंदर ये। इंट्यूशन आपको उस समय का एक ज्ञान दे देगी। इसीलिए इसको कहा गया इंट्यूशन लाइटनिंग की तरह है और सुपर माइंड सनलाइट की तरह है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। विज्ञान में बीइंग द नॉस्टिक बीइंग इज इन इट्स कैरेक्टर ए ट्रूथ कॉन्शियसनेस ए सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्रूथ विजन ऑफ थिंग्स ए मास्ट मूवमेंट और सटल बॉडी ऑफ नोसिस। इट्स एक्शन इज ए सेल्फ फुलफिलिंग एंड रेडिएटिंग एक्शन ऑफ द ट्रूथ पावर ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द इनर लॉ ऑफ देयर डीपेस्ट ट्रूएस्ट सेल्फ एंड नेचर। मेरा इससे एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन निकलता है। कई बार लोग बोलते हैं ये व्यक्ति भी आश्रम में है, वो व्यक्ति भी है, इसका क्या होगा क्या होगा। देखो भाई, भगवान लाए हैं जानबूझ, वो सब जानते हैं। अब क्या होगा ये उनकी समस्या है। वो लाए हैं, क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं। बाहर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बड़े मॉरलिस्ट लोग हैं, नहीं है। वो क्यों लाए हैं, ही नोज बेस्ट। तो ये क्योंकि उन्होंने अपने सुप्रामेंटल विजन में इस चीज को देखा है। आगे क्या कह रहे हैं, सुप्रामेंटल एक्शन से वो फुलफिल होता है। इसीलिए जब माताजी ने एक बार, मतलब ये 60s का वार्तालाप है, जब श्री अरविंद शरीर में नहीं है, तो श्री अरविंद माताजी को कहते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि माताजी उस चीज को कह देती हैं, क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं डोंट से दिस। एक्चुअली उन्होंने सबके लिए नहीं कहा था, लेकिन एजेंडा में है, छप गया। कहती हैं शिष्यों को ये मत बताना कि वो कुछ भी करें अल्टीमेटली वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये सुप्रामेंटल का वचन है। भगवान जो कहते हैं ना, वो पूरा होते ही होता है, ये उनका तथास्तु। ये बहुत कठिन है समझना। आप बोलेंगे वो व्यक्ति ऐसा, वो करा देंगे आपको, नचा सबई नचावत राम गोसाई, वो आपको करा देंगे। आपको लग रहा है ये तो गया गुजरा, वही कराएंगे। आप कहेंगे कि योग की कंडीशंस होती हैं, हाँ होती हैं। आप पूछेंगे भगवान योग की कंडीशंस, बोले हैं ये तो फुलफिल नहीं करता है, वो स्माइल करेंगे, करेगा, मैं न चाहूंगा। अब ये जो चीज है, ये इसीलिए कहा गया सुप्रामेंटल एक्शन फुलफिल्स इटसेल्फ। तो यहां पर उसी की बात है। द नॉस्टिक बीइंग इज इन इट्स कैरेक्टर ए ट्रूथ कॉन्शियसनेस ए सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्रूथ विजन ऑफ थिंग्स। केवल केंद्र का नहीं, सरकमफ्रेंस के चारों तरफ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, भविष्य भूतकाल सब। ए मास्ट मूवमेंट और सटल बॉडी ऑफ नोशिस। इट्स एक्शन, सुप्रामेंटल एक्शन की बात हो रही है यहां पर, वो मोस्ट इंटेंस है, लेकिन पूरे संसार में अब सुप्रामेंटल एक्शन है, इसीलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। इट्स एक्शन इज ए सेल्फ फुलफिलिंग। जो उन्होंने देखा वो हो गई होगा, वो तथास्तु है, आप उसको नहीं कुछ कर सकते। इट्स एक्शन इज ए सेल्फ फुलफिलिंग एंड रेडिएटिंग एक्शन ऑफ द ट्रूथ पावर ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द इनर लॉ ऑफ देयर डीपेस्ट ट्रूएस्ट सेल्फ एंड नेचर। ये पहले वो बताते हैं, वेरी रीअश्योरिंग। सब माने जगह जगह इस बात को कहा गया है। तो लेकिन ये जो ट्रूथ विजन है कैसे मैनिफेस्ट करता है, तो वहां पर वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रूथ ऑफ यूनिटी ऑफ वननेस बट ऑफ यूनिटी ओरिजिनेटिंग डाइवर्सिटी यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी एंड स्टिल यूनिटी ऑलवेज एंड इन डिफिसिबल वननेस। तो अब सुपर माइंड कैसे देखता है चीजों को और माइंड कैसे देखता है। माइंड भी यूनिटी कंसीव करता है, लेकिन कैसे, भैया मैं तो ब्राह्मण हूं, ये शूद्र है। माइंड ऐसे कंसीव करता है और जोड़ के सबका वो सब करेगा। सुपर माइंड कैसे देखता है, वो तो स्वयं को ही देखता है, भगवान को देख रहा है सब में, फिर वहां से मैनिफेस्ट कर रहा है। इसका एक सिंपल प्रैक्टिकल उदाहरण है। आश्रम में दो तरह से लोग देखते हैं, जो यहाँ के लोग हैं उसको आश्रम में भी देखते हैं ऐसे। एक देखते हैं कि अरे ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। माताजी की एक कहानी है, माताजी से किसी ने पूछा, दुमन भाई ने पूछा कि इसको आश्रम में क्यों रखा है, क्यों रखा है। तो माँ कहती तुम लिस्ट ले आओ मेरे पास, कौन कौन नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने लिस्ट ले आए 25 लोगों की। कहा पहले 25 दूँ फिर 50 दूंगा जो सबसे कठिन। माँ ये है, इसमें ये है, ये करके लास्ट। माँ ने कहा माँ ये आखिरी वाला क्यों रख रहे हो। कहते नहीं, ये पोस्ट कार्ड में वो स्टैंप लगाता है ना एनवेलप पे, बहुत अच्छा लगाता है। वो तो पूरी कहानी जानती हैं। तो अब देखिए ट्रूथ ऑफ यूनिटी क्या होता है, बहुत सिंपल है। पुराने समय में पिक्चर होती थी, एक फिल्म आई थी गोरा काला, दो बिछड़े हुए भाई हैं, ट्विंस हैं, एक गोरा है एक काला है, एक डाकू है एक पुलिस है, दोनों लड़ते हैं, एक दूसरे का खून करने वाले हैं, खून करने वाले हैं। तो क्या देखता है वो, यहां पर उसके ताबीज है, वही ताबीज इसके ऊपर भी है। तो वो चकित रह जाता है, कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर भैया, और वो माँ प्रकट होती है, माँ वही बेचारी माँ को बांधा है, वो माँ को ही छुड़ाने गया है। दूसरा उसके ऊपर पैसा लेगा, एक माँ को छुड़ाने गया है। तो कहता है माँ, कहती मैं कब से बोलना चाह रही, तुम दोनों मेरी ही संतान हो। अब देखिए क्या हुआ, अब दोनों एक हो जाते हैं और किसके अगेंस्ट लड़ते हैं, कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। तो एक तरीका देखने का ये, मेरा डिपार्टमेंट तेरा डिपार्टमेंट, मैं तुम, ये तो हम देखते हैं। और अगर यूनिटी लानी है तो उसका आधार क्या होगा, माताजी की जगह। अब देखिए इमीडिएटली आपका शिफ्ट हो जाएगा, भाई कैसा भी है माँ ने इसको यहां बुलाया है, माँ का बच्चा है, हम सब साथ साथ हैं। ये दृष्टि है, यूनिटी कैसे देखती है, यूनिटी। और यही माँ के कार्य को लोग समझ नहीं पा देते। एक एग्जाम्पल देता हूं, तीन एक दूसरे के शत्रु तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक दूसरे को आंख से आंख नहीं देख सकते थे, तीन लोग, नाम पता नहीं लू कि नहीं लू, पर समझ गए होंगे लोग, समझदार लोग, ले लेता हूं। एक तो थे हमारे सतप्रेम भैया, दूसरे थे प्रणव दादा, और तीसरे थे भाई जी। तीनों माँ के परम सेवक, मतलब आप इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को नहीं देख सकते। माताजी के पास माँ इससे बात कर रही है तो बच्चा, उससे बात कर रही है तो बच्चा, इससे बात कर रही है तो बच्चा। और ये हम सबके अंदर ये भाव जब उठता है, मैंने स्वयं एक शराबी होता था, यहाँ बहुत बता चुका हूँ, एक संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा उस्सा सब चला। एक दिन मैंने उसको, मैं आश्रम में था, देखा वो भी आके समाधि के पास से खड़ा था। मैंने कहा यार ये भी माँ का बच्चा है, मुझे तो इसके प्रति, ये शराबी है जो भी है, माँ ने इसको ले लिया है, फिनिश्ड स्टोरी। अगले दिन वो मेरे पास आया, ये माँ का खेल है, मेरे अंदर से सब कुछ उसके लिए हट गया था, जो भी था शुरू शुरू में, नया नया आया था, होता है ना आपका आइडिया, एयरफोर्स से आया हूँ, ये क्या दारू पी के तुम कहाँ। तो वो आया तो मैंने उसको कहा मुझे एक बात कहनी है तुमको। कहता है मुझे भी कहनी है। तो मैंने कहा पहले तुम बोलो। बोला मैं सोचता हूँ कि क्यों ये सब झगड़ा करूँ, आपसे मेरी क्यों शत्रुता हो। अब देखिए यही भाव मेरे अंदर था, शत्रुता नहीं थी मेरे अंदर, बिग वर्ड, पर एक होता है ना उसको देख के झुंझलाहट आना कि यार ये आदमी को देखूंगा ये बदमाशी करेगा, करता था, रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा, साइकिल पकड़ लेगा। तो कहता है मैंने कहा मेरे अंदर भी ये भाव आया, मेरे अंदर ये भाव आया कि माँ के बच्चे तुम भी हो, तो तुम भी माँ के बच्चे, मैं भी माँ का बच्चा, माँ का बच्चा माँ के बच्चे से क्यों लड़ेगा। उसके बाद जो उसने बोला वो मेरे तो मतलब कहते हैं ना होश उड़ गए। वो कहता है और क्या, माँ के सिवा और कौन है हमारा। ये शब्द मैंने कभी, मैंने कहा आज से तेरा जो दारू पिए नहीं पिए तेरी प्रॉब्लम है, जब चाहे जैसे, ये भगवान की लीला है कि जब उसकी मृत्यु हुई मुझे उसका सर्टिफिकेट देना पड़ा, किसी ने मुझसे आके पूछा कि वो तो बहुत पता है आपको बहुत परेशान करने की चेष्टा करता था, आप दोगे। मैंने कहा वो सब तो पुरानी कहानी हो गई, आप बोलो मैं दूंगा सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए भगवान की लीला, आपकी पूरी दृष्टि बदल गई। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का आधार ये है, ये आधार नहीं है कि हम सब मिलके फ्रेंडशिप क्लब बनाएंगे, पार्टी करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, इम्पॉसिबल, करना चाहिए। आधार है नॉस्टिक चेतना, जैसे ही आप उसमें उठेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपने आप आ जाएगी। यही श्री अरविंद का अनुभव है अलीपुर जेल का, जहां वो सब में नारायण देखते हैं, वासुदेव, और माँ उस अनुभव के बारे में के बताती हैं, इट इज ए सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस। यही आधार है। अब ये हम लोगों ने इस आधार की, अब वो बताते हैं कि क्या कंडीशंस इसकी बात हो रही थी। पहली है स्टेट ऑफ नोसिस, द कंडीशन ऑफ विज्ञान में बीइंग इज इम्पॉसिबल, without an ample and close self-identification of ourselves with all existence and with all existences. Kya use kiya? Existence and existences. Abhi main iske nitty gritty mein nahi jaunga, bada interesting hai. All existence, yani one existent who has become all. All existence, sab apne aap mein bhi. इसको ईश उपनिषद में दो श्लोकों में है, इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं ईश उपनिषद आधार है लाइफ डिवाइन का. ईश उपनिषद कैसे कहती है, पहले कहती है यस्मिन सर्वाणि भूतानि, अब वहाँ वो कह रही है जो सभी चीज़ों में आत्मा को देखता है, फिर वो कहती है नेक्स्ट श्लोक में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म वा भूत विजानता. तो पहले विजन में वो सबके अंदर भगवान और भगवान सबके अंदर. अब ये तो हो गया, वो तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया. अब वो देख रही है क्या देख रहा है ऋषि, क्या देख रहे हैं ऋषि यज्ञवल्क नेक्स्ट सेंटेंस में, यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मे वाभूत विजानता. ये सब जो कुछ है ना दिख रहा है भगवान ही बने हैं ये सब. अब वो एक डिटेल्ड क्वालिफाइड स्टेटमेंट है. अब वो जो ये देख लेता है उसका क्या अवस्था होती है, तत्र को मोह क शोका एकत्वम अनुपश्यत. तो ये ईश उपनिषद में आधार दिया गया है दिव्य जीवन का. और इसीलिए देखते हैं कि ऋषि अग्रवाल कहीं ना कहीं इसको इंट्यूटिवली जान रहे थे, तभी वो कहते हैं बार बार हिरणमय न पात्रे न सत्य स्याप ही तम मुखम तत्व पूषण न पावरणु सत्य धर्माय दृष्टे. कहते हैं आई वॉन्ट टू नो द लॉ ऑफ ट्रूथ. और बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी कहानी है, ही इज अ रिबेल वैदिक ऋषि, शायद कुछ लोग जानते होंगे. शुक्ल यजुर्वेद ही रिवोल्टेड अगेंस्ट वैशंपायन जो उनके गुरु थे, उनसे उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं ये पूर्ण सत्य नहीं है. तो उन्होंने उसको कहा सब उगल दो, निकल जाओ यहाँ से. ही वॉमिटेड एवरीथिंग एंड वेंट अवे. पर देखिए वेदों में उनका स्थान है, ईश उपनिषद उन्होंने दिया. तो ये है डिफरेंस. सो पहले तो इसके साथ क्या होता है, ए यूनिवर्सल परवेजिवनेस, ए यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कंटेनिंग ए सर्टेन ऑल इन ऑलनेस. आप सुप्रामेंटल चेतना से सब कुछ जान, यानी इंक्लूडिंग कि अरब ईरान वार में क्या हो रहा है, सॉरी अरब इजराइल वार या ईरान अमेरिका वार में, ये सारे सत्य एक साथ. ये नहीं कि केवल भाई हमको इससे क्या लेना देना, मैं खुश हूँ आश्रम में, डाइनिंग रूम में क्या बनाए ये बता दो, ये नहीं है. ये एक ऑल परवेजिवनेस, आप जो जानना चाहोगे जान लोगे. इट फॉलोज दैट ए डिलीवरेंस फ्रॉम द लिमिटिंग एंड इम्प्रिजनिंग ईगो इज द फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप टुवर्ड द बीइंग ऑफ द नॉसिस. माँ बार बार ये कहती हैं, बार 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 बार, वी वॉन्ट ए रेस विदाउट द ईगो, ईगो और सुपर माइंड डोंट गो टुगेदर. माँ बार बार ये कहती हैं बच्चे ईगो से बाहर निकलो, बाकी बात की बात है, इतना तो तुम कर लो. और जब हम कहते नहीं माँ नहीं, तो सारी घटना ऐसी होंगी कि आपकी ईगो को इतनी आहत पहुंचेगी, जहां ईगो छिपी है सबसे भयंकर ईगो होती है साधक की ईगो. आपके घर में ही कोई आपको बता देगा कोई साधक वाधक नहीं हो, बाधक हो. कहने का अर्थ कि आपको सब जगह से ईगो के ऊपर चोट पहुंचेगी, आपकी कामनाओं के ऊपर चोट पहुंचेगी. कई लोग इसको ले नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत कठिन होती है प्रोसेस. और लेकिन वो इसलिए क्योंकि या तो हम खुले खुले छोड़ दें, ठीक है भगवान अब हम आपके महाबाथरूम में हैं, जैसे हैं वैसे हैं, आप संभालो, लेकिन ये मनुष्य के लिए कठिन होता है. तो ईगो पे चोट पहुंचती है क्योंकि बिना ईगो के गए हुए सुपर माइंड का कल्पना करना, स्वप्न देखना भी मूर्खता है. तो यहां पर वो कह रहे हैं ए डिलीवरेंस फ्रॉम द लिमिटिंग एंड इम्प्रिजनिंग ईगो, ना केवल वो सीमित करती है, हमको जेल में बंद करती है. इज द फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप टुवर्ड द बीइंग ऑफ द नोसिस, एलिमेंट्री स्टेप. और सच में इसे बाहर निकल के लगता है अरे यार हम जेल में थे, हम बड़ा सोच रहे थे फर्स्ट क्लास जेल बन, सब हमारी चाकरी कर रहे हैं, वो कोई कुछ बना के दे रहा है, कोई काम कर रहा है, यहां तो भगवान आपको भेज छोड़ देंगे भैया, अपना 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 हाथ ही जगन्नाथ है. और तब आप धीरे धीरे इससे बाहर निकलते हैं. A secure universality of being is the very basis of the luminous higher consciousness. Secure luminosity. The least reversion to ego thought. Mera kya ho raha hai? Mere saath kya ho raha hai? Ego action, ego will brings back the consciousness tumbling out of such gnosis. Truth as it has attained into the falsehoods of the divided mind nature. इसीलिए एक बार आश्रम में एक ग्रुप बना था. वो डेंजरस क्यों था? ग्रुप था बेनिफिशियरीज ऑफ शिरोबिंदो आश्रम एसोसिएशन. एक पूरा ईगो का खेल था. बाहर से आप देखेंगे तो लगेगा कि जबरदस्त अच्छा है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर कि भाई हमको क्या फायदा हो रहा है, उनको ये फायदा हो रहा है, हमको क्या फायदा हो रहा है. आपको ये फायदा हो रहा है कि अगर आप ईगो को हटा देंगे तो आप भगवान बन जाएंगे. उनको क्या फायदा नुकसान हो रहा है अगर वो नहीं हटा रहे तो नहीं बन रहे. मतलब यही यहाँ फायदा नुकसान की एक ही परिभाषा है, दूसरी कोई परिभाषा नहीं है. जो आपका मूल पर्पस जिसके कारण आए हैं ये है. मूल पर्पस ये नहीं है कि आप किसके साथ जस्टिस हो रही है, किसके साथ पैसे मिल रहे हैं, किसको क्या बन रहा है, कोई अच्छे मकान में रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है. इट इज नॉट रेलेवेंट. क्योंकि जो असल काम है वो इससे नहीं हो रहा है, आपके एटीट्यूड और रिएक्शन से हो रहा है. तो यहाँ बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे साधना को आगे ले जाने के लिए होती हैं, लेकिन हम लोग उसमें उलझ जाते हैं. इसलिए वो कहते हैं सिक्योर यूनिवर्सैलिटी, अबैंडनिंग ऑल रिजिड सेपरेटनेस. वी हैव टू फील अवर सेल्स वन विद ऑल थिंग्स एंड बीइंग्स टू आइडेंटिफाई अवर सेल्स विद देम. इसीलिए मैं कई बार ये बात ओपनली भी बोली. मैंने कहा जो यहाँ पे पोजीशन मिली है जिनको, वो बेचारों की बहुत डिफिकल्ट स्टेट है. क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना कि भाई मैं तो हेड हूँ. अरे भाई यहाँ हेड अगर हो तो फीट पर जाना पहले सीखो. और शेरविंद को सावित्री में कहते हैं कि जो बीइंग होते हैं ना, डिवाइन बीइंग कैसे होते हैं, दे रूल बाय सर्विंग. इसी का सुपरमैन में भी वर्णन है. तो ये तो बड़ी भयानक परीक्षा हो गई तुम्हारी. अगर तुमने इसको सीरियसली ले लिया कि तुम विशेष हो तो यू आर इन ट्रबल. तो यहां पर उसका भाव आ रहा है. सर्टेन ट्रांसेंडेंट. ओके, वी हैव टू फील अवर सेल्स वन विद ऑल थिंग्स एंड बीइंग्स. और ये केवल आश्रम तक सीमित नहीं है, पूरी सृष्टि के अंदर कहीं भी कोई पीड़ा है, कष्ट है, नाना प्रकार की चीजें हैं. टू आइडेंटिफाई अवर सेल्स विद देम, टू बिकम अवेयर ऑफ देम एज अवर सेल्व्स. ये नहीं कि मैं और मेरा परिवार गॉन. विश्व बंधुत्व का भाव जागृत करना है. केवल मेरा सीमित परिवार नहीं है यहाँ. इसीलिए माँ बार बार, मदर कभी एनकरेज नहीं करती थी फैमिली का यहाँ पर आना, क्योंकि लोग उसमें बन जाते हैं. ये एक नेचर है. अभी भी आप देखें कि जो परिवार के साथ रह रहे हैं वो अल्टीमेटली वो परिवार में सीमित हो जाते हैं. तो मदर डिड नॉट एनकरेज, आप एक इंडिविजुअल के रूप में आइए और इंडिविजुअल के रूप में रहिए. ये प्रथा बाद में चली. नहीं तो एक समय तो ऐसा था कि, अब उन्होंने बोला था द्युमन भाई की जब वाइफ बहुत बाद में आई मिलने, तो माँ ने कहा यू कैन मीट हर ओनली वंस इन माई प्रेजेंस. क्योंकि वो, और इवन जो लोग आए बाद में आए अपने आप, कई रिफ्यूजी आए, एक रिफ्यूजी का एक अलग स्टेटस है, जो आए शरण ढूंढते हुए, उनको माँ ने रखा. लेकिन अदरवाइज ये बहुत क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए कि मेरा परिवार तो पूरा संसार है. और संसार केवल मनुष्यों का संसार नहीं, सब कुछ. क्योंकि ईशा सर्वभूतानाम तस्य, उसमें हम लोगों को उठना है. टू बिकम अवेयर ऑफ देम एज अवर सेल्व्स, टू फील देयर बीइंग एज अवर ओन, टू एडमिट देयर कॉन्शियसनेस एज पार्ट ऑफ आर्स, टू कॉन्टैक्ट देयर एनर्जी एज इंटीमेट टू अवर एनर्जी, to learn how to be oneself with all. That oneness is not indeed all that is needed, but it is a first condition, and without it there is no gnosis. ये नहीं कहते कि केवल ये चाहिए, कहते ये पहली चीज है, अभी बहुत कुछ है. तो ये जो कई बार कलेक्टिव ईगो हो जाती है आश्रम के अंदर, आश्रमाइट के अंदर, हम विशेष हैं, विशेष हो तो सेवा करके दिखाओ. विशेषता का लक्षण ये है, विशेष हो तो सबके साथ प्रेम करके दिखाओ, विशेष हो तो बंधुत्व का भाव लाओ. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो वो चीज यहां पे अगेन फर्स्ट कंडीशन. दिस यूनिवर्सैलिटी इज इम्पॉसिबल टू अचीव इन इट्स कंप्लीटनेस सो लॉन्ग एज वी कंटिन्यू टू फील अवर सेल्व एज वी नाउ फील ए कॉन्शियसनेस लॉस्ड इन एन इंडिविजुअल माइंड लाइफ एंड बॉडी. अंडरस्टूड है ये तो. आई एम डॉक्टर आलोक पांडे देन आई एम ए कॉन केस. वन हैज टू कंप्लीटली पास्ट खत्म. मतलब नींद में कोई उठा के पूछे कौन हो, माँ का बच्चा हूं. दूसरा कौन है, वो भी माँ का बच्चा है. ठीक है मेरा नाम है, परिचय है, वो बाहर से ट्रांजैक्शन उसमें होता है, लेकिन आपकी पहचान बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. अब फिर वो क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ब्रेन के बाहर जो काम होता है उससे द कॉन्शियस सेंटर ऑफ अवर बीइंग अवर थॉट अवर विल एंड एक्शन इवन द ओरिजिनल फोर्स ऑफ अवर सेंसेशंस एंड इमोशंस राइज आउट ऑफ द बॉडी एंड माइंड एंड टेक ए फ्री स्टेशन अबव देम. यहां से अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहां चला गया. कंट्रोल माइंड में कंट्रोल नहीं है. एक फेज आती है जब आपका मेंटल कंट्रोल नहीं रहता है. तो बहुत सी सारी चीजें तो हम लोग माइंड से कंट्रोल करते हैं. माइंड में क्या सेंस है, मॉरल सेंस है, प्रैक्टिकल सेंस है, रैशनल सेंस है, ये काम नहीं करती हैं. फिर क्या काम करता है, बीच में आपको एक फेज आएगा जब आप एकदम समझ नहीं आ रहा है, फिर क्या काम करेगा, डिवाइन सेंस, दिव्य दृष्टि से. मतलब अब आपकी मॉरल सेंस चली गई है लेकिन डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि इज इट द राइट थिंग, ट्रू थिंग और नॉट. ये जो मूवमेंट है ये सच का मूवमेंट है या नहीं है, जो एक अलग चीज है, जो झलक मिलती है इसकी कई बार, पर वो हमारा कंट्रोलिंग स्टेशन हो जाता है. अब देखिए गीता के योग में पहले बुद्धि, यहां बुद्धि को फर्स्ट स्टेप है, लेकिन फिर आपको हैंड ओवर करना है कंट्रोल. माँ कहती है बहुत कठिन होता है, और बॉडी के योग में तो बहुत ही कठिन होता है जब ये स्टार्ट होती है प्रोसेस, क्योंकि पूरा बॉडी हमारा माइंड से कंट्रोल्ड है. मतलब ज़्यादातर तो इंस्टिंक्ट से कंट्रोल्ड है, प्राण ऊर्जा से कंट्रोल्ड है, फिर आप माइंड से कंट्रोल करते हो. उसके बाद जब इस पर सुपरामेंटल कंट्रोल, ये फिजिकल मैटर तो अलाउ नहीं करता है. कई लोगों को यहाँ ओल्ड एज में जो हम देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि जो शरीर का जो कंट्रोल था वो अब सुपरामेंटल चेतना के पास जा रहा है, वो कंट्रोल करेगी, चेंज करेगी, वो एक लंबी प्रोसेस है. नो लॉन्गर हैव वी द सेंसेशन ऑफ लिविंग इन द बॉडी बट आर अबव इट एज इट्स लॉर्ड पजिशियर और ईश्वर एंड एट द सेम टाइम एनकम्पासिड विद ए वाइडर कॉन्शियसनेस देन दैट ऑफ द इम्प्रिजेंट फिजिकल सेंस. लक्षण क्या होगा, मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा, रोग से भय खत्म हो जाएगा. आप ट्रीटमेंट करेंगे जो जरूरी है क्योंकि आपको ये दिया गया है, पर हाय मुझे क्या हो गया, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे बचा लो, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, बिकॉज ये शरीर एक यंत्र है, दैट्स ऑल. It is from above the body and not from the brain that we shall ideate and will. The brain action will become only a response and movement of the physical machinery. तो आपको जो ऊपर से चेतना उतरेगी, शरीर ब्रेन एक मशीनरी है, उसके अंदर टक 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 जो भी करेगी स्टर, फिर आपके थॉट्स एक्शंस फ्लो करेंगे. लेकिन ब्रेन से आप नहीं सोच रहे हो. ब्रेन की थिंकिंग कैसी होती है, लेबोरियस होती है. वो पास्ट के चीजों को मेमोरी से प्रोसेस करती है. ब्रेन की प्रोसेसिंग सिस्टम ये है. यहाँ ये प्रोसेसिंग है ही नहीं, वो ऊपर से आ रही है, उतर रही है गंगा, लेकिन आपको एक्सप्रेस होगी ब्रेन के थ्रू. तो ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में ठीक रहना चाहिए. हमारे यहाँ थी एक बड़ी, क्या नाम था उन पारसी लेडी का, दोनों कपिल 90 साल की उम्र तक, बड़े इंटरेस्टिंग, भूल गया मैं, बहुत वो डिजरे में एडमिट थी. हाँ, यू रिमेम्बर, ऑलवेज वेट टूगेदर. अब वो जब डेजरे में थी तो उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सावित्री की लाइन बोलो तो ऐसे बोलती थी, और दिखता था ये कहीं और से आ रहा है, बट अदरवाइज अलग चीज. लेकिन ये सारी चीजों के लिए होना चाहिए कि ब्रेन की आपको जरूरत ना पड़े. यू आर आउटसाइड द ब्रेन. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, किसी ने उनसे बोला, सर सुना है आत्मा पीनियल ग्लैंड में होती है, तो श्री अरविंद कहते हैं कि बहुत पहले मैं इसको छोड़ चुका हूं लेकिन आत्मा तो है मेरी. लेफ्ट इट लॉन्ग बैक. निरुद्धा का एक क्वेश्चन है और वो भी कहते हैं इसीलिए यहाँ शूट करो तो मर जाता है। भाई वो मर्म स्थल है, आत्मा का स्थल नहीं है, उसका नर्व सेंटर से उसका कनेक्शन है, पर वो एक अलग विज्ञान है। तो खैर, बट दिस सेंटर एंड दिस एक्शन आर फ्री, नॉट बाउंड, नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल मशीन, नॉट क्लैम्प्ड टू अ नैरो ईगो सेंस। मतलब आप बीमार हैं, कोई भी आपकी अवस्था है, अगर डिवाइन एक्शन को होना है तो फिर होगा, उस समय आपका वो सारा अलग हो गया। बिकॉज वो केवल एक, मतलब वो चेतना क्या कहती है बॉडी को, भैया बैठ जाओ बस काम मैं करूंगी। उसके बाद अगर आपका शरीर रुग्ण है तो वो एग्जॉस्ट फील करेगा क्योंकि उसकी ऊर्जाएं, पर कई बार वो ठीक भी हो जाएगा क्योंकि आप ब्रेन नहीं काम कर रहा है, ब्रेन मतलब ब्रेन से काम नहीं कर रहे हैं, ओरिजिन कहीं और है और वो आपके ब्रेन और बॉडी को यूज कर रहा है। तो चूंकि वो उच्चतर चेतना है, वो आपके शरीर और मन को भी ठीक करती है, ब्रेन को भी ठीक करती है। तो यहां उसका वर्णन है कि वो ब्रेन केवल एक मशीनरी हो जाता है। इट इज नॉट शट अप इन ए सेपरेटेड इंडिविजुअलिटी फीलिंग आउट फॉर क्लम्सी कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड और ग्रोपिंग इनवर्ड्स फॉर इट्स ओन डीपर स्पिरिट। क्यों मुझे टॉक देनी है, कैसे दूंगा, मैं तो बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है, आपने देनी है, जिसने देनी है वो दिलाएंगे आप देखिए ना केवल आप दे पाओगे, वो भगवान ठीक है। और ये सभी काम में, टॉक की तो मैं एक व्यक्तिगत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी काम आपको करना है भगवान आपको उससे काम करेंगे। इसीलिए माँ यहाँ जनरली एनकरेज नहीं करती थी कि बीमार हो तो तुम ऑफ लो, माँ तो यहाँ तक कहती थी तुम बीमार कैसे पड़ गए जब भगवान का काम कर रहे हो। ऐसे से लोग हैं कहते हैं हम तो गए थे माता जी के पास, हम बीमार हैं, माता जी तो डांट के कहने लगी हाउ डिड यू फॉल सिक, नॉट सपोज टू फॉल सिक। अब इसके पीछे देखिए उनका गुड़ रहस्य है कि भाई तुम्हारा ब्रेन और बॉडी काम कर रहा है, ईगो से काम कर रहे हो। बेसिकली उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा तुम अहंकार से काम कर रहे हो, जब काम भगवान कर रहे हैं तो फिर क्या। तो ये इसका वर्णन है, द वेरी नेचर ऑफ आवर कॉन्शियस एक्टिविटीज इज हैंस फोर्थ यूनिवर्सल। अब वो इंडिविजुअल नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया, उस समय भगवान क्या पोर करेंगे, आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, फिर फिक्स्ड रिजिड नहीं है वो, एक फ्रीडम में वो चीज बाहर आती है, उतरती है। वन विद दोज ऑफ द यूनिवर्सल बीइंग, इट प्रोसीड्स फ्रॉम यूनिवर्सलिटी टू अ सपल एंड वेरिएबल इंडिविजुअलाइजेशन। माँ ये दो कंडीशन बताती हैं सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की, कहती है वाइडनेस और सपलनेस। कोई भी तुम्हारे रिजिड नैरो आइडिया है तो सुपर माइंड नहीं एक्ट कर सकता है, वो कहाँ से आते हैं, ईगो से। दूसरी कहती है सपलनेस। सपलनेस क्यों, क्योंकि तुम्हारे अगर कोई भी मॉरल आइडियाज, सोशल आइडियाज, ये नॉर्म्स हैं तो नहीं एक्ट कर सकता है क्योंकि आपने बैरियर बनाए हुए हैं। कई लोगों को ये बात नहीं समझ आती है, लेकिन यही तो बात गीता की पूरी बात ही तो यही है कि मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे कौन कौन खड़े हैं सामने। तो श्री कृष्ण तो सुप्रामेंटल एक्शन, उसके वो कहते हैं एक्ट। इफ बाई डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड मस्ट एडवांस, डिस्ट्रॉय देन, ये उनके शब्द हैं। मॉरल फॉर्मेट बनाया नहीं सर, गांधी जी ने बोला है कि नहीं ऐसे करना है, तो जाओ फिर गांधी जी के आश्रम। दिस इज हाउ इट इज, ये जो भगवान का एक्शन तो ऐसे ही होता है। बट दिस एम्फेसिस इज डिफरेंशियल रादर देन सेपरेटिव। तो इसमें ये बता रहे हैं कि लेकिन एक इंडिविजुअल एक सेंटर रहेगा कि भाई हर एक व्यक्ति के अंदर से वो अपने ढंग से एक्सप्रेस करेगा, वही तो विविधता है। ये नहीं कि सब लोग जो खुले हैं वो एक ही बात बोलेंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, वो डिफरेंशियल होगा, सेपरेटिव नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मैं वो, आपके थ्रू भगवान ऐसे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अप्रिशिएट करोगे कि दूसरे के थ्रू भगवान कैसे एक्ट कर रहे हैं और तीसरे के थ्रू कैसे एक्ट कर रहे हैं। फिर ये भी देखोगे हर किसी के अंदर अवरोध जो हो रहे हैं, रेजिस्टेंसेस जो आ रहे हैं, जिसके कारण वो एक्शन डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये भी दिखाई देगा। तो यहां उसकी बात कर रहे हैं कि इट इज डिफरेंशियल, बट दिस एम्फेसिस इज डिफरेंशियल रादर देन सेपरेटिव, एंड दिस फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर व्हाट वी नाउ अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअलिटी. इसीलिए चैतसत्ता इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअलिटी रहती है. देर इज नो लॉन्गर ए पेटी लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड पर्सन शट अप इन द फॉर्मूला ऑफ हिज ओन मैकेनिज्म. यानी मैं अपने पापा मम्मा का बेटा नहीं हूं. मैं तो जगत जननी का बच्चा हूं. यह आपकी पहचान बन जाएगी. अब वो पोर करेंगे. अब ये नहीं मतलब है कि आप निर्दयी हो जाओगे, पापा मम्मा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है इसका मतलब. वहां भी आपका एक्शन इसके अनुसार होगा. माँ कहती थी कुछ लोगों को, कुछ लोगों को माँ ने कहा है कि नो योर मदर इज सफरिंग, यू कैन गो एंड सी हर. कुछ को कहा है इफ यू गो हाउ विल इट हेल्प. ऐसे भी कहा है माँ ने. तो आप एक फिक्स्ड फॉर्मेट में फिर उस एक्शन को नहीं बांध सकते हैं. अब वी कम टूवर्ड द एंड. इसके साथ क्या होता है, साथ में देर इज ए ग्रेटर काम, फ्रीडम, लाइट, पावर, इफेक्टिविटी ऑफ विल, वेरीफिएबल ट्रूथ ऑफ आइडिएशन एंड फीलिंग. हर लेवल पर ये काम करेगी. अब लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि जैसे जैसे ये चीज हम लोगों को लगेगा कि ज्ञान है जो उतर रहा है या एक सुपरमेंटल लव और आनंद है. अब अंत में ये बड़ी इंटरेस्टिंग कि ये अनंत जब काम करने लगता है शांत के अंदर, ये विद्या विद्या की जो बात है उसी की बात है कि क्या केवल ये सुपरमेंटल केवल हमारे थॉट प्रोसेस में काम करता है. पेज 493. दस इट टेक्स अप अवर सेंस एक्शन एंड इल्यूमिनेंस इट इवन इन इट्स ऑर्डिनरी फील्ड सो दैट वी गेट ए ट्रू सेंस ऑफ थिंग्स. सेंस पे भी काम करता है. बट ऑल्सो इट एनेबल्स द माइंड सेंस टू हैव ए डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द इनर एज वेल एज द आउटर फिनोमिना टू फील एंड रिसीव और परसीव. For instance, the thoughts, feelings, sensations, the nervous reactions of the object on which it is turned. वो अगले के अंदर क्या स्पंदन हो रहे हैं, संवेदनाएं हो रही हैं, वो सब आपको पता चलेगा. It transforms similarly the sensations and give them their full intensity as well as their full holding power. It takes up to the element of knowledge in our feelings and emotions. For our feelings to contain a power of knowledge. इसका क्या अर्थ है? आपको difference पता चलेगा true feeling and fabricated feeling. Fabricated feeling क्या होती है? प्राण के आवेग से आ रही है लेकिन वो आपको करा रही कि I am feeling like this. पर supramental truth आपकी feeling के truth को भी बाहर निकाल लेता है. उसमें कोई mixture है उसको भी हटा देगा और वो फीलिंग का जो सत्य है उसको प्रकट कर देगा आपके सामने. द नोसिस टेक्स अप नॉट ओनली अवर इंटेलिजेंट विल, केवल संकल्प नहीं, बट अवर, अब देखिए क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, बट अवर विशेज, डिजायर्स, इवन व्हाट वी कॉल द लोअर डिजायर्स, द इंस्टिंक्ट्स, द इंपल्सेस, द रीचिंग्स ऑफ आउट ऑफ सेंस एंड सेंसेशंस. And it transforms them. They cease to be wishes and desires because they cease first to be personal. अब अगर इसको एनालाइज करो तो डिजायर्स आ रहे हैं पर्सनल नहीं है, विशेज आ रही हैं पर्सनल नहीं है. आप उसे होल्ड नहीं कर रहे हो कुछ भी, वो आई ऐसे चली गई, एक्ट कर गई, जो उसको करना था उसने कर दिया. आप उसको ईगो से नहीं पकड़ रहे हो. इट्स कैन बी वेरी अनर्विंग. अब आप सोचिए इसमें, इसीलिए इसको शेरविंद ने लेबोरेटरी कहा है और इसीलिए हर किसी को यहां एडमिट करने की कभी नहीं कि कोई भी आ जाओ, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट होता है, आप सोचिए ये अवस्था में कोई व्यक्ति है, लोअर इंस्टिंक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, विशेष की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक सत्य है, लेकिन वो सत्य आपको विश और डिजायर के रूप में आ रहा है. वो आएगा, पकड़ेगा, विश डिजायर खत्म हो जाएगी, सत्य रहेगा. अब सोचिए आप मानव संबंध में इसका क्या अर्थ है या जीवन में. इट टेक्स अप नॉट ओनली अवर इंटेलिजेंट विल बट अवर विशेज, डिजायर्स, इवन व्हाट वी कॉल द लोअर डिजायर्स, द इंस्टिंक्ट्स, द इंपल्सेस, द रीचिंग्स आउट ऑफ सेंस एंड सेंसेशंस, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स देम. नो लॉन्गर ब्लाइंड और हाफ ब्लाइंड रीचिंग्स आउट ऑफ द इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंट मेंटेलिटी, they are transformed into a various action of the truth will, and that will acts with an inherent knowledge of the right measures of its decreed action, and therefore with an effectivity unknown to our mental willing. आगे जो कह रहे हैं वो और भी आगे, मतलब कहते हैं ना कि वो अल्टीमेट. कई लोगों को ये बात नहीं समझ आती और ये आपको मतलब हिला के रख दे अस्तित्व को. जो लोग मॉरली जज करते हैं ना साधना को, क्या कह रहे हैं यहां पर, देयर फोर टू इन द एक्शन ऑफ द विज्ञान में विल देर इज नो प्लेस फॉर सिन. फॉर ऑल सिन इज एन एरर ऑफ द विल, ए डिजायर एंड एक्ट ऑफ द इग्नोरेंस. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, इट गोज कंप्लीटली अवे. उसका ट्रूथ है, जैसे आपके मास्क उतार दिया और उसके सत्य को रखा, तो डिजायर चेंज हो गई इन समथिंग एल्स. ए ट्रूथ रिलेशन इफ यू वांट टू पुट इट विद हर एक चीज के साथ, जिसमें आप कुछ नहीं चाहिए. डिजायर क्या होती है, जो खुद के लिए कुछ चाहती है. ईगो, ये मेरा है, ये खत्म हो गई. मुझे इससे क्या सुख मिल रहा है, वो खत्म हो गया. लेकिन आप नॉर्मली ये चीज होगी तो बाहर के जीवन में लोग कहते हैं फिर मेरा क्या लेना देना, मैं चला अपने सुख की कटोरी लेके ढूंढने कहीं और मिल जाए. यहां वो खत्म हो गया क्योंकि यहां पर एक डिवाइन वो ऑपरेट कर रही है. इट टेक्स अप ऑल अवर इमोशंस एंड टर्न्स देम इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव एंड डिलाइट. इवन अवर हेट्रेड्स, रिपल्शंस, कॉजेज ऑफ सफरिंग, उनको भी बदल देता है. उनके अंदर भी ट्रूथ है, करते हैं ना श्री कृष्ण शिशुपाल को, उसमें भी उद्धार कर रहे हैं. मां डांट रही हैं, डांट के उस व्यक्ति के अंदर से चीजें हटा रही हैं. ये चीज कई लोग नहीं समझ पाते, ये डांटा क्यों, प्रेम प्रेम है, अगर आप उसको सही ढंग से लेंगे तो चला जाएगा. यही दुर्वासा ऋषि बेचारे पूरे, उनका नाम था सुवासा, दुर्वासा रख दिया किसी ने, पर थे उनके सारे एक्शन देखो आप, अच्छे ही किया उन्होंने जिसको भी. ये नहीं कि दैट इज एन आइडियल टू फॉलो, लेकिन जो इस चेतना में उठ रहे होते हैं. नौली दा के तो कैसे एग्जाम्पल हैं. किसी ने नौली दा से कहा मेरी तो कोई गलती नहीं है, माँ ने बोला है कि कहीं चले जाओ. नौली दा बोले व्हाट एवर मदर टेल्स यू, यू डू इट, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू. चला जाता है, 10 साल बाद कहता है आपका जो सलाह थी बिल्कुल परफेक्ट थी. वो अपने आप में मतलब इतना आगे बढ़ा चेतना के अंदर. तो भगवान का एक्शन ऐसे नहीं होता है कि जो हम बाहर से मापदंड से देखते हैं. When desire ceases entirely, ये नहीं कह रहे हैं कि डिजायर में ऑपरेट करो, लेकिन उसको भी भगवान यूज करते हैं. When desire ceases entirely, grief and all inner suffering also ceases. The vijnan takes up not only our parts of knowledge and will, but our parts of affection and delight and changes them into action of the divine anand. नास्टिक बींग ये नहीं कहता ना ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का हूँ, मैं तो बस भगवान का हूँ, ना कोई मरता है ना मरता, ऐसे नहीं कहता है. सारे रिलेशन है लेकिन उनका सत्य अब आ रहा है, उसका अफेक्शन ऐसे नहीं है ओ मेरा है आ रहा है. माता जी जब उनका बेटा आता है ना, 30, देखिए 30 साल सी स्टेट नथिंग, पर जब आता है तो माँ वेट कर रही है गोलकुंड में कि उनका बेटा आ रहा है. कौन समझेगा, क्योंकि हमारी जो आइडिया है समझने की उससे हम कैसे समझेंगे. और वही बेटा देखिए टिल द लास्ट मिनट कितना उसका योगदान रहा. इट रिस्टोर्स अवर होल नेचर टू द इटर्नल गुड. इट डील्स सिमिलरली विद अवर परसेप्शंस एंड सेंसेशंस एंड रिवील्स ऑल द डिलाइट दैट दे सीक, बट इन इट्स ट्रूथ, नॉट इन एनी परवर्शन एंड रॉन्ग सीकिंग एंड रॉन्ग रिसेप्शन. सब कुछ इंद्रियों का सुख भी रूपांतरित होता है. इट टीचेज इवन अवर लोअर इम्पल्सेस टू ले होल्ड ऑन द डिवाइन एंड इन्फिनिट एंड इन द अपीयरेंसेज आफ्टर विच दे रन. दस द बीइंग ऑफ विज्ञाना इज इन ऑल इट्स एक्टिविटीज ए प्ले ऑफ परफेक्टेड नॉलेज पावर, विल पावर, डिलाइट पावर, raised to a higher than the mental, vital and bodily level. All pervasive, universalized, freed from egoistic personality and individuality. It is the play of a higher self. अब क्या है, egoistic personality क्या होती है ना, जहां सुख मिलता है वहां बार बार जाती है, मुझे ये सुख ढूंढना है. पर supramental action ऐसा नहीं है. Act wise, free. You are acting in complete freedom. कोई चीज की आपके ऊपर stain नहीं है, कोई craving नहीं है, कुछ नहीं है. तो इसको समझना इसीलिए मुश्किल है. सारी सिद्धियां इत्यादि आती हैं, उसकी बात उन्होंने कही है, लेकिन अपलिफ्टेड, नॉट जो प्राण जगत में दिखती हैं. देयर द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर द ईगो बट द फ्री जीव डोमिसाइल्ड इन द हायर डिवाइन नेचर. डोमिसाइल मतलब उसके लिए वो वे ऑफ लाइफ बन गई है. ऑफ विच ही इज ए पोर्शन परा प्रकृति जीव भूता इन द विज्ञान द राइट रिलेशन ऑफ एंड एक्शन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति आर फाउंड. Because there they become unified and the divine is no longer veiled in maya. All is his action. Last part hai. To kya hota hai phir? Jiva no longer says, I think, I act, I desire, I feel. Ye bhavi nahi aayega. Bolne ki baat nahi hai. Kya hota hai uske andar phir bhav? God himself by his prakriti knows, acts, loves, takes delight through my individuality. सकली तुम्हारी इच्छा. फिर वो क्या है, लुके बोले करियामी, तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लुके बोले करियामी, योर एक्शन यू आर डूइंग. इनफैक्ट वो स्टिक ही नहीं करता, वो पता ही नहीं चलता है कि क्या एक्शन हुआ है नहीं हुआ है, भगवान कर रहे हैं. लोग जो समझे समझे, वो अलग बात है. टेक्स डिलाइट थ्रू माई इंडिविजुअलिटी, भगवान हमारा मजा ले रहे हैं. एंड इट्स फिगर्स. अब इसीलिए आप खुश रहोगे, क्यों, क्योंकि उनको आप करेला क्यों खिलाओगे, बिटर चेतना, उनको भी बिटर टेस्ट आएगा ना, वो आनंद लेने आए हैं. देखिए तो बड़ा बिटर है, आप खाएंगे तो है क्या, बेचारों का थोड़ा सोचना चाहिए ना. व्हेन वी आर इन जॉय भगवान भी लेगा, अरे वाह मजा आ गया. फिर भगवान हमको जब जॉय देते हैं, दैट द इंटरचेंज. ये देखिए ओरिजिनल वैदिक योग है, यू ऑफर एंड यू रिसीव फ्रॉम द गॉड्स, या यू ऑफर टू द डिवाइन एंड रिसीव फ्रॉम द डिवाइन. Through my individuality and its figures and fulfills there in its higher and divine measures the multiple leela which the infinite forever plays in the universality which is himself forever. Ye hai ultimate freedom. Individual freedom, universal freedom, freedom in every action. Which is the freedom of the infinite playing with the finite. Jai Mahavir.